सबसे सुहाने पल है जिंदगी, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं।
समाना तो क्या तेरी याद में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए
ओम शांति। सबका तन मन शांत है, तन भी शांत है और मन भी शांत है। अगर मन शांत है तो बताओ, आज सवेरे बाबा ने बहुत अच्छा काम दिया था। देखो, भगवान आके बच्चों की पालना करता है। सारे कल्प के अंदर ऐसा एक समय है, देवताएं सुन मिलेंगे, साधु संन्यासी मिलेंगे, है ना, शास्त्रों का ज्ञान मिलेगा, बहुत मिलेगा, लेकिन भगवान स्वयं आकर के सवेरे सवेरे आत्माओं को खाना खिलाता है, भोजन देता है। तब आत्मा की काया और आत्मा भी और काया भी दोनों कांचन, दोनों स्वच्छ होते हैं। तो उसको बाबा ने आज कहा हृदय स्वच्छ होता है, है ना। तो ये करने के लिए आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, वो याद आना चाहिए। एक बात कहा कि आप ऐसे कर्म करो तो आपका औरों को साक्षात्कार होगा, है ना। तो कैसे कर्म करो कहा, तो याद कैसे करेंगे। भक्ति में तो राम 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 करते रहेंगे, ओम नमः शिवाय करते रहेंगे, तो अभी बाबा को याद कैसे करेंगे, वो तो निराकार है। तो आत्मा समझे आपको याद नहीं थी मैं शरीर हूँ, तो है शरीर की तो याद थी, तो शरीर को पाव दर्द कर रहे तो याद है मैं माता जी हूँ, याद है। तो कैसे आत्मा समझे आपने, अगर माता जी कौन है हमको पता नहीं, तो मैं पूछूंगा ना, माता जी आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आप क्या करते हो, तब तो मुझे समझ में आएगा ना। तो आत्मा समझना कैसे हो गया, उसके लिए भी ऐसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि हर सेकंड आप देख लो, कभी भी किसी ने पूछा बहन जी, भाई जी तो नहीं कहेंगे ना, बहन जी कहेंगे, हर सेकंड आपको याद है मैं माना शरीर है ना। हर सेकंड अपने आप से पूछ लो, हर सेकंड हमें नेचुरल स्मृति है, बहुत जन्मों की आदत हुई है शरीर है। तब बाबा रोज मुरली में कहता, आप देखना एक दिन भी ऐसी मुरली नहीं होंगी जिस दिन बाबा ने ये शब्द नहीं कहा, बच्चे आत्मा समझो। और पहले पहले बाबा ने कहा, बच्चे मुझे याद करने की जरूरत नहीं, मैं आया हूँ, किसके सामने आया हूँ, आत्माओं के सामने आया हूँ। अगर शरीर समझते हो, मेरे और आपके बीच में पर्दा है। अगर आत्मा समझते हो, आत्मा और परमात्मा दोनों शक्ति है, अंतर नहीं, दूर नहीं लगता, बहुत दूर ऐसा नहीं लगता है, नजदीक ही महसूस होगा। तब कहते हैं दुनिया में लोग जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान हमारे साथ रहेगा। वो पूछ लो आप, भगवान को तो अपना घर है, हमारे साथ क्यों रहेगा वो, तो कैसे रखेंगे आप। तो आज किसने कर्म करते करते बाबा को याद कैसे किया वो कौन बताएगा, कर्म करते करते बाबा की याद कैसे किया। रोटी बेल रहे थे आप, सब्जी काट रहे थे, हाथ तो काम कर रहे थे, तो मन क्या कर रहा था, तो क्या बाबा को याद किया आज, हाँ मीठे बाबा प्यारे बाबा किया, हाँ ये कहा, और क्या किया। देखो याद मना क्या, बच्चा माताजी ने बच्चों को कहा, बच्चे मार्केट से सब्जी लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, दो तीन चीज बताया, बच्चा मार्केट में गई, मम्मी ने मुझे कुछ लाओ कहा था, क्या लाओ कहा था याद ही नहीं है, है ना। तो याद बुद्धि को रहती है ना, माँ बाप ने बच्चों को जो कहा वो याद रहती है। तो बाबा ने आज आपको क्या कहा था, क्या काम कर दिया था, क्या करो कहा था, हाँ तो वो क्या था, एक एक बताओ, एक एक बताएंगे ना, एक दफा सारे बताएंगे तो नहीं आएगा, तो एक बताओ माता जी क्या सुनाया था, हाँ तो बाबा ने कहा था, ये याद है आज बाबा ने मुझे क्या काम दिया था, बच्चे खाना बनाते हो तो बाबा की याद में बनाओ। तो याद क्या करेंगे, तो फिर सोचना चाहिए याद क्या करे बाबा को। हाँ बाबा ने कहा, बाबा कौन, सर्वशक्तिवान है शिव बाबा, ये खाना आपके लिए बनाया है, आप इसके अंदर ऐसी शक्ति डालो, ऐसी शक्ति भरो जिसका तन भी निरोगी काया हो जाए, मन भी निर्मल हो जाए, कि आप शक्तिदाता हो, सर्वशक्तिवान हो, ऐसी इसके अंदर शक्ति भरो, जो खाएगा उसका तन भी निरोगी हो जाएगा, उसका मन भी निर्मल हो। तो ऐसे बाबा को याद माना क्या, वो याद करना पड़ेगा ना। तो बाबा को याद करते कर्म करते करते ये होना चाहिए, रोटी बना रहे हो, सब्जी काट रहे हो, बाबा ये आपको भोग लगने वाली है, आपके लिए सब्जी बना रहे हम, तो इसके अंदर एक घास नहीं जाना चाहिए, मट्टी नहीं जाना चाहिए, बहुत ध्यान से सब्जी काटना चाहिए, भगवान को भोग लगाने वाले है। आपको पता होना चाहिए कि क्या हो गया, एक बार बताता हूँ कि जयपुर में अभी भी बहन है, कहानी नहीं, तो बहुत सवेरे सवेरे उठ करके भोग है, कल गुरुवार है, सिर पर स्नान भी किया और बाबा को भोग बनाया, भोग बना करके भोग डब्बे में डाल के रख दिया, और वतन में गई, बाबा ने देखा, कहा बच्ची डब्बी में तो साफ है, तो बाबा भोग में साफ कैसे आएगा, डब्बी में साफ कैसे रहेगा। वतन में बाबा ने दिखाया उसको, डब्बी खोल के देख लो, तो वो तुरंत नीचे आ गई और कहा इस डब्बी के अंदर साफ है, भोग किसने रखा था, बहन जी ने रखा था। वो कहते मैंने भोग रखा है, साफ कैसे होगा इधर, तो आपको कैसे, आपका भ्रम है, आपको ठीक नहीं है पता है, देख लो खोल के देखा तो पनीर की सब्जी थी, उसके अंदर साफ कहाँ है, लेकिन बाल का टुकड़ा था, सुना, तो बाल का टुकड़ा उसके अंदर देखा, बाबा ने साफ दिखाया कि भगवान को और देवताओं को भोग लगाने में ये अंतर है ना, भगवान पवित्रता का सागर है, इसलिए मधुबन में भी पहले भोग बनाते थे, किसी की दृष्टि मम्मा बनाती थी, किसी की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए, सारे दरवाजे सब बंद कर देते थे, नहीं तो जिलेबी बन रही है, माता जी ने देखा मुंह में पहले पानी आएगा ना, हाँ आज जिलेबी बनी है, पहले भोग तो आपने लगाया फिर बाबा को लगेगा, है ना। तो इतनी सफाई चाहिए, खाना देखो बनाते हो आप, रोटी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, बाबा को पहले भोग लगता है, फिर औरों को मिलता है, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। तो खाना बनाते समय ये याद रखो, जो बाबा ने आज काम दिया कि ये बाबा के लिए बना रहे हैं, बाबा को भोग लगने वाला है, बाबा की शक्ति होनी चाहिए, बाबा आपके लिए सब्जी बना रहे हैं, सब्जी काट रहे, ये याद रहेंगे तो फिर बाबा ने क्या कहा वो भी याद आएगा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, एक के बाद एक एक लाइन चलती रहेंगी। तो मन स्वच्छ है, तो स्वच्छ मन से अगर आप जो भी काम करते हो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होता है। नहीं तो देखो आप सब्जी काटते काटते और किस किस की याद आती है ना, मन बुद्धि कौन कौन याद करता है, दो आत्मा तो नहीं एक ही है, तो कौन याद कर रहा था, दो आत्मा है, सब्जी काट रहे हो, रोटी बना रहे हो, तो और दूसरों की याद कहाँ से आती हो, हाँ देखो माता जी को याद है अच्छे तरह से, मन सोचता भी है, मन शांत है, बुद्धि को याद है, 10 साल पहले देखो इन्होंने बहुत गुस्सा किया था, 10 साल पहले इन्होंने ऐसा किया था, 10 साल 15 साल 25 साल पुरानी बातें बुद्धि में याद आती है। तो दो चीजें, एक मन और एक बुद्धि। तब बाबा ने कहा बच्चे मन और बुद्धि दोनों मेरे से लगाओ, है ना, दोनों सच्चे होना चाहिए। तो मन योग में बैठते हो आप, मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंद हूँ, अरे आज इसको फोन करना था, ऐसे याद आता है ना, दूसरे विचार आते हैं ना, तो कहा जाते बुद्धि खाली रहती है, नहीं तो पाव दर्द हो रहा है, शरीर की याद आएंगी, शरीर धारियों की याद आएंगे। तब बाबा ने आज कहा था किसी को भी देहधारी को याद नहीं करना, और 2 दिन पहले कहा था अगर आत्मिक स्मृति है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा का चिंतन है, तो वहाँ बाबा की याद ठहरती है। बाबा ने कल ये कहा था, परसों ये कहा था, 1 महीने पहले ये कहा था, सब अपने आप याद आएंगे। बाबा ने मुझे क्या काम कहा था, क्या किया है, ये करो, सब याद आएंगे अपने आप। अगर आत्मिक स्मृति नहीं, अगर आप बैठो शरीर समझ के बैठो, 1 मिनट बाबा मैं आत्मा हूँ ज्योति, अरे आज उसको फोन करना था, आज ये काम करना, कोई ना कोई देहधारी आएगा, क्योंकि देह का स्मृति है। तब जब भी याद रखो आज के बाद जब भी अमृत वेला योग करते हो। बहुत माताएं देखा सवेरे सवेरे चारों धाम की यात्रा करते हो, चारों धाम की अमृत वेला नहीं, खाना खाते थे उठते हो बीच बीच में नहीं उठते हो, चारों धाम की यात्रा सारा दिन में करो बाद में करो, है ना, सवेरे सवेरे कहीं भी बैठो एक जगह पर कम से कम आधा घंटा बैठ सकते हो। पर खाने के लिए कितना टाइम लगता है, शरीर को खाना खिलाने के लिए कम से कम 15 मिनट तो लगता है ना, तो उस समय बार बार हिलते तो नहीं है, उठते बैठते तो नहीं है, एक जगह पर बैठे हो, तो आत्मा को खाना खिलाना है। अमृत वेले बाबा आता है आत्मा को सर्वशक्तियां देने के लिए, शरीर को तो नहीं, आत्मा को, शरीर के लिए बाद में नाश्ता करेंगे, है ना, आत्मा को खाना खिलाने के लिए जब बैठते हो अमृत वेले, एक जगह कहीं भी बैठो, मेडिटेशन हॉल में बैठते हो, यहाँ बैठते हो, तो आए बैठे दो मिनट के बाद उठ गए, क्यों उठते पता है आप, शरीर का भान रहता है, पाँव दर्द करता है, कमर दर्द करता है, शरीर की क्यों, मन बुद्धि चलती नहीं है, तो मन बुद्धि नहीं चलता तो शरीर में दर्द होता है, पाँव का याद आया और कुछ याद आया, उसके कारण एक रस होके बैठ नहीं सकते। इसलिए कल से एक अभ्यास करो, अगर आधा घंटा कम से कम बैठ सकते हैं एक ही जगह पर, देखो ब्रह्मा बाबा भी दीदी मनमोहिनी दीदी थी, यहाँ बैठती थी अमृत वेले, किसी एक टिक होके बैठते थे सवेरे सवेरे आकर के, दीदी को जानते हो, है ना, हाँ देखो इधर है दीदी, सवेरे सवेरे योग करते, बाबा बैठता था कैसा, तो अभी हम बैठ नहीं सकते हैं कि अभ्यास चाहिए, अभ्यास के बाद बैठ के अगर माता जी बैठी आके आराम से बैठो, बैठते शुरू करो, क्या शुरू करो, मैं कौन, अपने आप से पहले बात करो, आत्मा समझ आ जाए ना, आत्मा समझ शिव बाबा को याद करूंगा, पहले शिव बाबा को याद नहीं करना, अगर नहीं तो शरीर की स्मृति होंगी, पहले यहाँ बैठते ही आके बैठते ही आप मैं कौन, किसको पूछा, किसने पूछा, किसने किसको पूछा, दो जो है ना, मैं पूछता हूँ भाई जी आपका नाम क्या है, तो आप जवाब देंगे ना, तो आप किसको पूछते हो मैं कौन, ना ना, और बताओ, हाँ अपने आप को, दो आत्मा तो नहीं एक ही है, कौन किसको पूछ रहा है, हाँ अब देखो इन्होंने कहा मन बुद्धि पूछता है, दोनों नहीं मन बुद्धि को, देखो भारत में कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करते हैं, दो हाथ जोड़ते हैं, है ना, ये शरीर के है, आत्मा के भी दो हाथ है, मन और बुद्धि को एक करना चाहिए, तब कहेंगे एकाग्रता, तब आपको शरीर का कोई भी याद नहीं आएंगे, शरीर हिलेगा नहीं, शरीर की स्मृति नहीं आएंगी, पाँव दर्द हो रहा है कुछ भी याद नहीं आएगा, तब बाबा ने बहुत दफा कहा बच्चे अशरीरी बनो, विदेही बनो, आत्म अभिमानी बनो, अव्यक्त बनो, व्यक्त बना शरीर, तो कैसे बनेंगे आप, हर चीज की खाना सब्जी बनाओ सब्जी अपने आप बन जाती है, तो सब्जी लाना है, काटना है, धोना है, इतना गर्म, ज्यादा गर्म करेंगे तो जल जाएगा, तो हर कर्म की विधि है, एक पहले योग करने की भी विधि चाहिए, नहीं तो बैठे दो मिनट के बाद उठाए चले गए, तो आप आते जाते हो दूसरों को डिस्टर्ब होता है ना, एक जगह बैठो, और कभी भी हॉल में आते हो पीछे दरवाजे से आना चाहिए, और उठ के पीछे से आगे जाएंगे या आगे वाला दूसरों को डिस्टर्ब होता है, दूसरों का ध्यान जाता है ना, और आके बैठते ही अपने आप से बात करो मैं कौन, तो बुद्धि में जवाब देना चाहिए, आपके हर एक के पास मन और बुद्धि, यही सारी दुनिया में और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में यही डिफरेंस है, दुनिया में बहुत लोग तपस्या करते हैं, देखो विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया क्रोध को भी जीत नहीं सका, तपस्या करना ही सब कुछ नहीं है, इसमें विकर्म विनाश नहीं होते हैं, बाबा ने कहा मैं आया हूँ सोना हीरा कुछ देने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा काम क्या है, पतित आत्मा को पावन बनाने आए हो, आप भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्यों आए हो, हॉस्पिटल में क्यों जाते हो, ऐसे जाते हो डॉक्टर दवाई दे रहा है ले लो, ऐसे जाते हो नहीं, पहले बीमार समझते हो तो हॉस्पिटल में जाते हो, नहीं तो नहीं जाते, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो हमको क्या करना है, पहले समझते हो मैं बीमार हूँ तो आप दवाई लेने जाते हैं ना, तो यहाँ भी आत्मा के अंदर पाप है, कैसे पता चला, हाँ किसने बताया, देखो माता जी कहा देखो स्वप्न बताता है, अगर इस दूध में पानी है कैसे पता चला आपको, हाँ साइंस ने बनाया एक साधन बनाया, पता चलता है इतना पानी इतना दूध। ये पुण्य आत्मा पाप आत्मा कैसे बताते हो आप? हाँ, जब आप रात को सोते हो आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्नों में कौन आ रहा है? अगर पांच विकारों के स्वप्न आते हैं कहाँ जाते हो? दिन में तो ये माताजी दिखाई देता है, ये भाई दिखाई देता है, ये दिखाई देता है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन रात को तो कोई नहीं, आके बंद करके सोए हो, तो स्वप्न कहाँ से आते? बाहर से तो नहीं आते। आत्मा ने जब इस शरीर में जन्म लिया, इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो जो कर्म करते हो आप, हर सेकंड आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है। ये एक अच्छी तरह से याद रखना। हाँ, बहन जी गुस्सा करेंगी, वो उसने किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया, उन्होंने जो किया वो उसके अंदर रिकॉर्ड होगा, आपने क्या किया आपके अंदर रिकॉर्ड होगा। नहीं तो नहीं, उन्होंने ऐसे बोला इसलिए मैंने भी बोला। हाँ, उन्होंने तो बोला, आपने क्या किया? तब कहा जो करेंगे वो पाएंगे, है ना। तो इसलिए एक शब्द याद रखो, आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करती है, जब तक अंतिम सांस तक इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो भी कर्म करते हो आप, हर सेकंड हर कर्म मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। एक शब्द सदा याद रखना। देखो मैं अभी बात कर रहा हूँ, बीच में खांसी आया तो भी रिकॉर्ड हो जाएगा ना कि नहीं होंगी? नहीं, ज्ञान का शब्द रिकॉर्ड होगा, खांसी नहीं होंगी, है ना। जिस भी बोलो तो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। सब दुनिया में लोग पहले डरते थे, भगवान देख रहा है ना। दुनिया में भक्ति में पहले लोग कहते थे भगवान देखता है, डरते थे। अभी डरना नहीं, समझ होनी चाहिए, मैं जो कुछ कर रही हूँ मेरे अंदर ही रिकॉर्ड हो रहा है, इसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। अगर अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा ही, गलत कर्म किया तो गलत भी उसका भी दुख भोगना पड़ेगा। बच्चा जन्मते ही लंगड़ा अंधा कौन बना रहा है? भगवान ऐसा करेगा? किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को गरीब, किसी को श्रीमंत बनाएगा? हमने किए हुए कर्म है। कैसे पता चला मैंने किया कर्म है? स्वप्न बताता है, फिर मन में विचार आता है, फिर कर्मों में आता है। तो मन में गलत विचार कहाँ से आए? हम कहते हैं अशांति है मन में, कहाँ से आए हो? हमारे अंदर ही है। तब बाबा ने आज कहा कि आज ऐसे कर्म करो तो उस कर्म करते करते क्या करो, मन में ज्ञान का चिंतन चले। आज बाबा ने ये कहा था, आज बाबा ने ये कहा, ये कैसे करो? करते करते बाबा से बात करो, बाबा आप कहते, आप तो ऊपर बैठे हो, नीचे आओ तो पता चलेगा आपको, है ना। ऊपर बैठ के बताना सही है, संसार में आओ तो पता चलेगा। आप कहते हो ऐसे कर्म करो, ऐसे करो, ये कैसे करो? ऐसे बाबा से बात करो, बाबा कल आपने ये भी कहा था, आपने परसों ये भी कहा था, एक एक पॉइंट चलती रहेंगी। इसको कहा बाबा से बात करते करते भगवान को अपना साथी बनाते बनाते कर्म करो। वो कर्म श्रेष्ठ कर्म है, उस कर्म का 21 जन्मों के लिए बाबा गारंटी देता है, 21 जन्म तक आपको सुख मिलेगा उसका। तो आप बताओ, कर्म तो आप कर रहे हो रोज, घर में भी रोटी बनाते हो, सब्जी काटते हो, यहाँ भी करते हो, दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों में अंतर है, हर एक व्यक्ति दुनिया में कर्म करता है, वहाँ कर्म करना और यहाँ करना। बाबा के घर में सेवा करने के, माता जी घर में सब्जी काटते हो रोज, यहाँ भी करते हो, अंतर क्या? हाँ, तो वहाँ टीवी चल रही है, बच्चे कुछ आवाज करते हैं और कुछ आवाज है, तो दूसरे विचार चलते हैं। यहाँ तो अगर वहाँ भी कर सकते हो आप, वहाँ भी खाना बना रहे हो, सब्जी काट रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, कपड़े धो रहे हो, हर कर्म करते समय मन में किसकी याद है? हाँ, बाबा ने जो जो कहा वो याद आती है बार बार। बाबा ने ये करो कहा था, बाबा ने ये करो कहा था। अगर ये विचार करते करते कर्म करते हो, उस कर्म को कहा श्रेष्ठ कर्म, वो श्रेष्ठ कर्म आपको सारे कल्प में बाबा गारंटी देते हैं किस जन्मों के लिए प्रारब्ध बना रहे हो। तो अभी आप पूछो, मधुबन में सेवा करके प्रारब्ध बना रहे हो कि ऐसा एक जन्म के लिए कर रहे हो? हाँ, है ना। तो आज बताओ, आज मुरली सुनी तो मुरली एक दूसरों को सुनाया किसी को? सिर्फ तन निरोगी, तो बाबा ने कहा हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तीन मिलता है ना। निरोगी की यज्ञ की अगर आप सेवा करते हो तो ये यज्ञ आपको वरदान देता, निरोगी काया का वरदान देता है। बाबा कुछ नहीं देता है, बाबा कहते बच्चे मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए शिव बाबा का नाम है भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। जैसे खेती में एक बीज बोलो तो 50-100 दाना लगते हैं, बीज बोना तो पड़ेगा ना, बिना बोए हुए कुछ उगेगा? कुछ बोना पड़ेगा। गेहूं का बीज बोलो तो चावल उगेगा नहीं, जो बोएंगे वो उगेगा। तो तब बाबा ने कहा बच्चे इस शिव बाबा ने आके सृष्टि पर ये रुद्र यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की इस तन के द्वारा सेवा करो तो ये यज्ञ आपको निरोगी काया का वरदान देगा। समझ गया? इस पे सब चाहते हैं कि बाबा की यज्ञ की सेवा करना चाहिए। सेंटर भी बाबा का यज्ञ है, कहीं भी सेवा करो बाबा की यज्ञ की सेवा करो तो यह यज्ञ आपको देगा। तो तन ठीक है, धन नहीं चाहिए। धन कहाँ से आएगा? शिव बाबा ऊपर से भेजेगा, कैसे आएगा बताओ? तो बाबा ने कहा रोज सवेरे सवेरे ज्ञान धन देता है ना, तो ये धन दान करो तो बढ़ेगा। हाँ हाँ, तो कैसे धन कैसे मिलेगा? अभी ज्ञान धन दान ही नहीं किया। आज किसी ने आज की मुरली के पॉइंट किसी को सुनाया? नहीं सुनाया। आप दान ही नहीं किया, कमाई किया ही नहीं है भाई, बताओ किसी ने दान किया? बात करना चाहिए, बोलो, लेकिन मुख से क्या निकलना चाहिए? आज की मुरली के पॉइंट निकलने चाहिए। पहले के था भाई जी को मिलते ओम शांति किया, इतना ही नहीं, ओम शांति कहने के बाद एक हीरा दान करो, है ना। तो दाता के बच्चे हो, शिव बाबा ने आपको धन दिया, आपने डायरी में लिख करके बंद करके रख दिया, हाँ उसको दान नहीं किया तो कैसे बढ़ेगा? तो बाबा ने कहा संगम का एक सेकंड, एक व्यक्ति को अगर आप दे दो एक जन्म के लिए धनवान बनेंगे। तो मुरली सिर्फ आपके लिए नहीं, औरों को सुनाओ। आपने सुना, नोट भी किया, क्या फायदा? तो आपस में मिलते हो, बात करो जरूर, मिलते माताजी को मिलते पूछना, माताजी आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, बाबा ने ये कहा था। आपने एक सुनाया माताजी के मन में और एक याद आएगा, हाँ बाबा ने ये भी कहा था, है ना। तब बाबा एक दूसरों को याद दिलाओ, करते हो? सारा दिन में मिलते तो हो, बात करते हो, मुझे के पॉइंट किसी को सुनाते हो? भाई बताओ दान कर किया आज? किया? कितने लोगों को किया? कितने लोगों को दान किया? किया माताओं ने? बताओ किया आज? हाँ नहीं किया, थोड़े माताओं ने थोड़े से किया, धनवान दो तीन बनेंगे बस, भाई में से एक ही धनवान बनेगा, बाकी धनवान बनना नहीं चाहते हो? हाँ एक ही भाई ने किया बस। हाँ तो को हर्जा नहीं, आज तो हो गया, कल से याद रखो। क्यों? इसका भी विधि है, ये भी मुरली सुनने से आपको नहीं, हमें भी याद नहीं रहता है, मुरली भी सुनने की तरीका है, है ना। धन ये ज्ञान धन ऐसे नहीं सुन लिया एक बार आपने मुरली याद रहेगी, नहीं हमको भी नहीं रहता है। तो मुरली सुनने के पांच तरीके हैं। आज सुना हुआ ज्ञान आप अपने में बाबा के साथ ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ, तो उसमें से कम दो तीन तो आप कर सकते हो। एक, जब आराम से सुनते बैठो, सुनते सुनते देखना आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, हाँ ये पॉइंट बाबा ने मेरे लिए कहा ना, मुरली सुनते सुनते लगता है आज ये बहुत अच्छी बात बताई, तो उसको लिखो भाई, लिख करके अपने जेब में रखो। धन कहाँ रखते हो? जेब में रखेंगे ना, ये ज्ञान धन है। एक मुरली के पॉइंट आपके जेब में होना चाहिए, माताएं डायरी में भले लिख दो और अपने साथ रखो, है ना। तो शरीर को कितनी दफा खाना खिलाते हो? आत्मा को कितनी दफा खिलाते हो? एक दफा, एक टाइम। तो शक्तिशाली कौन हो गया? आत्मा हो गई। एक टाइम आत्मा को खिलाया, शरीर को तीन दफा खिलाया, तो शरीर शक्तिशाली हो गया ना। तो शरीर माना पांच विकार, हाँ देह विमान आ गया, इसलिए क्रोध जाता ही नहीं छोड़ करके। तो माता जी के घर में तीन दफा अगर क्रोध को खाना मिला तो क्रोध छोड़ के जाएगा? नहीं जाएगा, माता जी के घर में तीन दफा खाना मिलता है, हाँ तो फिर आप कहेंगे भाई जी खाना नहीं खाए,
नहीं खाओ,
शरीर को तीन दफा खिलाते हो, आत्मा को भी तीन दफा खिलाओ। कैसे खिलाएंगे? मुरली तीन दफा सुनेंगे, मुरली कहाँ मिलेंगे? सवेरे तो सुन लिया, फिर दोबारा कहाँ मिलेंगी? हाँ तब कहा भाइयों को, कहा एक लिख के जेब में रख दो, हरेक को बाबा ने दो हाथ दिया है। खाना खाने इधर मुरली सुनी, उसके बाद नाश्ता करने जाते हो, नाश्ता करने बैठते ही दो हाथ है ना, ये हाथ इधर जा रहा है, ये हाथ जेब ढूंढने जाना नहीं, डायरी कहाँ है, जेब से निकालो, आज बाबा ने क्या कहा, पढ़ा, रख दिया, ये आत्मा के लिए भोजन है। माता डायरी सामने रख दो, पढ़ो, खाना खाने बैठो। हाँ फिर दिन में फिर भूल जाते, संसार में बिजी होते हो जाओ, को अर्ज नहीं, दिन में खाना आते ये हाथ जाता है, यही आ जाता है, ये हाथ इधर गया, ये हाथ ढूंढने जाओ नहीं, जेब में रखो, पढ़ो। हाँ रात को भी, रात को सवेरे खाया था, पेट दो तो नहीं है ना, एक ही है, सवेरे खाना खाया था, रात को क्यों खा रहे हो? हाँ शरीर को भूख लगती है, आत्मा को भी भूख लगती है, तब क्रोध आता है। तो आत्मा को भी, रात को भी, दिन में आज के एक मुरली के पॉइंट कम से कम तीन दफा अपने आप को पढ़ाओ, एक दफा नहीं, और धुन पढ़ने की जरूरत नहीं, सारी मुरली पढ़ने से एक पॉइंट बस, भगवान के एक बूंद के प्यासे हैं, एक एक बूंद इकट्ठा करो, 30 दिन के अंदर 30 मुरली के पॉइंट आपके जीवन में धारण हो जाएंगे। बहुत खाने से मोटा नहीं बनता है, थोड़ा सा खा लो लेकिन हजम करो, उसको खून बनना चाहिए। बहुत मुरली सुनी, एक भी पॉइंट याद ही नहीं है, क्या फायदा? एक ही पॉइंट सुनो और कम से कम तीन दफा अपने आप को पढ़ाओ, हो सकता है, कर सकते हो ऐसा? अगर एक अंदर देखो खाना खाया, मशीन लगा हुआ, मशीन अपने आप काम करता है ना, तो अंदर जो ज्ञान गया देखो आपको शाम तक याद आएगा, अरे बाबा ने सवेरे ये काम बताया था, हमने किया ही नहीं है ऐसे, और किसी को सुनाया आपने तो भी, देखो मैंने उनको बोला, उनको भी सुनाया, मैंने किया ही नहीं, अपने आप खाएगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं औरों को जरूर सुनाओ, मुख से ज्ञान वर्णन करना चाहिए। अब जितने धन है, जितने लोगों को सुनाते हो उतने धनवान बनते हो, एक व्यक्ति को कम से कम सुनाते हो एक जन्म के लिए धनवान बन सकते हो। दान करो, सुन करके लिख करके रखो नहीं, अगर लिखा नहीं, माता जी कहती है भाई जी मैं लिख नहीं सकती हूँ, कोई अर्जा नहीं, बाजू में बहन जी बैठी हो लिख रही है, फिर कुछ अगर पानी प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलता है, ढूंढेंगे ना, नहीं चलने दो, प्यास लगने दो, नहीं पिया तो चलेगा, हाँ ढूंढते थे कहाँ मिलेगा, ढूंढ के पीते है ना। तुम बहन जी लिख रही है, दिन में पूछो बहन जी आपने सवेरे मुरली के पॉइंट लिखा था, क्या लिखा था बताओ, पूछ सकते है ना, है ना। तो अगर प्यास लगी, इच्छा है, मुरली सुननी है, इनको ने तो उनको ने तो उनको पूछेंगे, तो ये आपके लक्ष्य के अनुसार है, मुझे धन लेना है। औरों को भी ध्यान करो, अगर याद है दूसरी माता जी मिली, माता जी ओम शांति, उसके बाद देखो आज बाबा ने बहुत अच्छे पॉइंट सुनाया था, आपके मुख से बार बार मुरली के पॉइंट आना चाहिए, यही संगम युग की विशेषता है, इसी का यादगार है, कमल मुख है ये, तब जो हमारे मुख से बार बार गलत शब्द निकलता है, गुस्सा आता है, ये कैसे जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा, ये शुरू करेंगे तो वो जाएगा, ये अपने आप परिवर्तन नहीं होगा, आप कहेंगे अपने आप जाना चाहिए। और भी एक दवाई है, ये मुरली के पॉइंट आप कम से कम एक हफ्ता 15 दिन अपने जेब में रखो और कम से कम तीन दफा अपने आप को पढ़ाओ, देखना उसके बाद गुस्सा आपको छोड़ के अपने आप चला जाएगा। ये दवा भी है कि गुस्सा क्यों आ रहा है, कि बेहोशी में आता है, जब होश है तो नहीं आता है, तो मुझे गुस्सा करना नहीं था, पता था, फिर भी आ गया, क्योंकि बेहोश है, बेहोश वालों को होश में कैसे रहेंगे, संजीवनी बूटी सुंगाते हैं, तो ये ज्ञान संजीवनी बूटी है, बार बार सारे दिन में तीन दफा अपने आप को सुंगाते हो, पढ़ाते हो, तो बुद्धि जागृत रहती है ना, होश में रहते हो, हाँ कुछ न कुछ बात होती जरूर है, आप गुस्सा नहीं करेंगे, आपके मुख से गलत शब्द निकलेगा नहीं, क्यों, होश में हो। तो अपने को होश में कैसे रखेंगे, एक मुरली के पॉइंट अपने साथ रखना चाहिए। लिख के रखो, नहीं तो पूछ लो बार बार। जब भी कोई माता जी लिखती है, बहन जी लिखती है, उनको पूछो, बहन जी सवेरे क्या लिखा था आपने, याद ही नहीं उसको। सवेरे पूछो, दिन में पूछो, शाम को पूछो, पूछेंगे ना, क्योंकि प्यास लगे तो पानी ढूंढेगा ना, नहीं प्यास लगे चलेगा। तो ये प्यास क्या, और ये सारे कल्प के अंदर सिर्फ संगम पर करते हो। तब बाबा ने कहा, भगवान आके बच्चों का भाग्य बनाने आया है, इसलिए उसको कहते भाग्य विधाता है। वो तो अपने आप तो भाग्य नहीं बनाएगा, विधि बताता है। एक, पहले लिखना, पहले सुना, सुनने के बाद लिखो। तीसरा, बस तीन दफा कम से कम अपने आप को पढ़ाओ। चौथा, बाबा ने कहा खाना खाने बैठते सुनाया, खाना खाते समय, खाना बनाते समय, खाना खिलाते समय, अगर माता जी खाना खिलाती है तो हाथ से खिलाते हो, मन में क्या करते हो? कभी कहते हैं हमारे पति हमारे बच्चे ज्ञान में नहीं चलते, तो उनको ज्ञान कैसे सुनाएंगे? सुनते नहीं हो। अगर बच्चा दवाई खाता नहीं, बहुत कड़वी है, कैसे देंगे? बीमार है, रहने दो, चलेगा? तो कैसे दवाई देंगे, है ना? कुछ चीनी लगाएंगे, मद लगाएंगे, कुछ लगा के देंगे ना। अगर आपके परिवार में पति आपके बच्चे कोई ज्ञान में नहीं चलते, तो उनको आप ज्ञान सुनाएंगे कैसे? क्योंकि ज्ञान के बिगैर गति नहीं है। ये ज्ञान जो भगवान आके सुनाते हैं, उसके बिगैर किसी की गति सदगति हो नहीं सकती है। तो ज्ञान सुनाना जरूर है। कैसे सुनाएंगे बताओ, परिवार वालों को कैसे सुनाएंगे? हाँ, प्रकाश देंगे। तो ज्ञान तो चाहिए ना, प्रकाश तो योग का देना है, लेकिन मुझे भी तो सुनाना पड़ेगा ना, दवाई तो देना पड़ेगा ना। तो दवाई कैसे देंगे? हाँ, वो युक्ति बताओ, वो युक्ति क्या है, आप कैसे खाना खिलाएंगे? बाबा की याद में तो, लेकिन ज्ञान नहीं सुनाएंगे ना। हाँ, तो वो हो गया याद की शक्ति, ज्ञान भी सुनाना है, दवाई तो देनी जरूर है, तो दवाई कैसे सुनाएंगे? ना, वो तो आपका ज्ञान सुनना नहीं चाहता है। परिवार वाले कहते आपका ज्ञान हमको नहीं चाहिए। क्यों क्यों नहीं सुनना चाहते है? माता जी रोज मुरली सुन के जाती है, गुस्सा भी करती है, कुछ बोलती भी है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गई, कुछ परिवर्तन तो हुआ ही नहीं है। आप इस डॉक्टर के पास जाके दवाई ठीक लिया आपने, आपका ठीक नहीं हुआ, मेरा कहाँ होगा? तो ज्ञान परिवार वाले सुनना नहीं चाहते, फिर उनको सुनाना जरूर है। कैसे सुनाएंगे? कर्म के द्वारा, चलन दे। तो ज्ञान तो देना पड़ेगा ना, दवाई तो देनी पड़ती है, दवाई के बिगैर ठीक नहीं होगा। तो ज्ञान उसके अंदर जाना चाहिए, कैसे जाएगा? हाँ, तो इसलिए आज बाबा ने तीन चीज कहा, एक खाते समय, एक बनाते समय, एक खिलाते समय भी। जब आप घर में बच्चों को खाना खिलाते हो, हाथ से खिलाते हैं ना, तो शरीर को खिलाते हो, आत्मा को। तो मन में आपके मन के विचार, मन में बाबा की याद, कहा उसने मन में याद करो, बाबा आपने मुझे कहा आज कि गुस्सा नहीं करो, ये भी तो आपका बच्चा है, इसको भी आप बताओ गुस्सा नहीं करो। मुख से नहीं बोलना, मन में, जो मन में संकल्प किया, संकल्प आत्मा को पहुंचता है, खाना शरीर को पहुंचता है, एक साथ दोनों काम हो गया, तन भी कर रहा है मन भी कर रहा है। परिवार वालों को मुख से नहीं सुनाना, शरीर को ठीक नहीं करना है, मन को करना है। तब का शरीर को माता एक खाना खिलाते हो, तीनों टाइम पति को बच्चों को घर में खाना खिलाते हो, खाना खिलाते खिलाते मन में और कोई विचार नहीं करना। उस समय बाबा को याद करो, बाबा आपने मुझे सवेरे कहा ऐसे करो ऐसे करो, आप इनको भी बताओ, ये भी तो आपका बच्चा है। तो मन में उस समय याद करते हो, वो संकल्प उसको पहुँचता है। समझ में आया? परिवार वालों को ज्ञान भी कैसे सुना है, ऐसे मुख से नहीं सुनाना, क्योंकि वो कड़वा लगता है उनको, है ना, नहीं सुनेंगे। सुनाने का तरीका है, तो एक स्वयं को कैसे सुनाए याद रखे, वो एक तरीका बताया, है ना। और फिर दान भी करना चाहिए, ये धन है तब बढ़ेगा। तो धन किसी को भी मिले, कोई भी मिले, अगर बाबा के बच्चे मिले तो बहन जी मिल गई, माता जी मिल गई, ओम शांति किया, उसके बाद अगर समय है, माता जी आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, सुनाया आपने, तब उनका चेहरा देखना, बाबा कहता है बच्चे खुश रहो और खुशी बांटो, तो खुशी कहाँ से लेके आएंगे? ये मुरली के पॉइंट, अगर मुरली के पॉइंट किसी को सुनाओ और उनके चेहरे को देखना, चेहरा खिलता है ना, तो ये खुशी बांटने का तरीका है। پھر ان کو بھی یاد آئے گا آپ نے ایک بتایا ہاں بابا نے یہ بھی کہا تھا. اوروں کے من میں بھی آپ اچھے وچار جاگرت کر سکتے ہو لیکن پہلے دینا پڑتا ہے. تو دو کام کرنا چاہیے, ایک امرت ویلے جب بیٹھتے ہو دن میں دو دفعہ یوگ کرنا چاہیے. امرت ویلے آدھا گھنٹہ کم سے کم بیٹھو, سمے پر آؤ, تیار ہو کے لکش ہونا چاہیے کہ مجھے سمے پر جانا چاہیے. تیار کر کے آنکھ کے پیچھے دیری سے آتے ہو پیچھے بیٹھو, ہمارے کارن دوسروں کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. کہیں بھی بیٹھتے ہو ایک جگہ پر آدھا گھنٹہ بیٹھ سکتے ہو تب بیٹھ سکتے, نہیں تو پاؤں درد کرتا ہے. شریر کا بھان ہے تو پاؤں درد کرتا ہے, اور کوئی وچارت ہے, من چنچل ہے, ادھر ادھر کی وچارت ہے, استھر ہونا چاہیے. کرنا سیکھنا پڑے گا نا, نہیں تو وکر وناش کیسے ہوں گے. بابا نے آج کہا اگر پوتر آتما بن گئی ایک منٹ بھی شریر میں نہیں رہ سکتی ہے نا, پرم دھام میں جائیں گی. تو پوتر بنانا ہے کہ پھر ادھر دوبارہ جنم لینا ہے, ادھر رہنا ہے اور ایک جنم لے لو چلے گا. ہاں تو جانا ہے نا, ہاں ایک ہی دم مٹانا ہے تو ودھی پوروک ابھیاس کرنا پڑے گا. آپ کہیں گے کھیتی میں بیج بولو تو آپ نے جا کے ایسے بیج ڈال دیا, چڑیا کھا کے جائیں گی. بیج بونے کی ودھی ہے, یہاں بھی یوگ کرنے کی ودھی ہے. آپ نے بھکتی میں کتنی تپسیا کیا, کتنا ورت کیا, کتنی پوجا کیا, وکرم وناش ہوئے نہیں. تب بابا نے کہا بچے یہ شبھ بابا آ کے پڑھاتا ہے کہ بچے بیٹھتے ہی آ کے کہیں بھی بیٹھو, بیٹھتے پانچ منٹ پہلے اپنے آپ سے بات کرو, میں کون, کس کو بدھی, بدھی جو ہاں اس دن بابا نے کہا تھا میں آتما ہوں, ایک انگولی جڑ گئی. دوسرا میں کون, میرا روپ ترنت یاد آتا ہے, نہیں تو میں منا شریر یاد ہے. تو بدھی سے پوچھو میں کون, میرا روپ, ہاں میں سفید چمکتا ہوا ستارہ اس برکتی کے بیچ میں بیٹھا, ایسا دیکھنا نہیں, دکھائی نہیں دے گا ایسا. ہاں نیمتا جی کہ بھائی جی دکھائی تو نہیں دے رہا, کہاں ہے, ادھر تو نہیں اندر ہے. ہاں تو آتما اس برکتی میں بیٹھا ہے. پھر میرے گن آتما کے ساتھ گن ہے, روز یاد رکھنا چاہیے. نہیں تو روز یہ رہتے ادھر بیٹھے بابا آج گسا کرنا نہیں تھا لیکن گسا آ گیا, وہی یاد رہتا ہے. نہیں وہ سویرے نہیں, سویرے اپنے گن یاد کرو. جب ہمارے سات گن ہیں پتا ہے نا, ایک ایک گنوں کو یاد کرو روز. چوتھا میرے کرم کیا ہے, میں آتما اس برکتی میں بیٹھ کر ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں, یوگ میں بیٹھ کر. کوئی گیا کوئی آیا ادھر دیکھتے ہو یوگ کر رہے کی گاڑی چلا رہے ہو بتاؤ, کوئی گیا ادھر دیکھا ادھر دیکھا نہیں. پھر اگر ادھر ادھر دیکھتے ہو تو آنکھیں شریر چلا رہے ہو آپ. تب بابا نے کہا اشریری بنو, ارتھات جب یہ آتما کا چنتن چلتا ہے تو ادھر ادھر شریر ہلتا نہیں ہے. آخر کوئی آیا گیا کوئی ہمارا کام نہیں, ہم کو بابا کو یاد کرنا ہے. تو اپنے آپ سے بات کرتے من اور بدھی بات کرتا ہے. تو روز یاد رکھنا پانچ پرشن پہلے اپنے آپ سے پوچھ لو, ایک میں کون, دیکھو ابھی پوچھنا ٹھیک ہے, دوسرا میرا روپ, تیسرا میرے گن, چوتھا میرے کرم, پانچواں میں کہاں سے آیا. یہ پانچ پوچھ رہے ہو میں آپ شریر سے الگ, شریر کی یاد نہیں ہے ٹھیک ہے. ابھی کر کے دیکھنا سمجھ میں آیا. یوگ میں بیٹھتے نیند آنے کا بھی کارن یہی ہے, کیونکہ نیند کب آتی ہے, من شانت ہو گیا, شانت ہو گیا نیند آ گئی, بدھی خالی ہو گئی کچھ کام نہیں, تو دوسرے وچار آتے ہیں. تب آپ کہتے یوگ میں بیٹھتے ادھر ادھر کے وچار آتے ہیں, تو خالی ہے, پرانے پرانے باتیں یاد آئیں گی نہیں تو نیند آئیں گی. اور سارے کلب کے کمائی کا سمے ہے یہ امرت ویلا اور شام کو, یہ آدھا گھنٹہ سویرے آدھا گھنٹہ شام کو. کچھ بھی ہو, کسی نے ایک لاکھ روپے دیتا ہے کہا نہیں نہیں چاہیے, وہ کھایا پیا یا ختم. یہ پدموں کی کمائی سارے کلب کے لیے جمع کرتے ہو, سارے کلب کے اندر یہی ایک سمے ہے جو شبھ بابا آ کر کے بچوں کو گیان اور یوگ کی شکتی دیتا ہے. اس سمے نہیں تو کہتے بھگوان بھاگیہ بانٹنے آیا تھا, ماتا جی کہاں تھی, نیند آ رہی تھی, اس نے آیا تھا وہ بانٹ کے چلا گیا. ہاں اس سمے جاگرت رہو سویرے سویرے, اچھی طرح سے تیاری پہلے سے کرنی پڑتی ہے. اس لیے رات کو کم کھاؤ, کھٹی چیز نہیں کھاؤ, نیند آنے کا کارن ہے. تو یہ بھی چاہیے پڑھتے سوتے سمے ایک مرلی پڑھتے پڑھتے سو جاؤ, نہیں تو ادھر ادھر کے وچار ادھر ادھر کی بات کرتے کرتے سوئیں گے تو کون آئے گا, انت متی سوگتی ہے نا. सोते सोते समय और कुछ सुनते रहो, पढ़ते रहो। नहीं, मुरली एक तकिया के नीचे रखना जो सवेरे लिखा हुआ हो या कोई भी, तो पढ़ते 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 सो जाना चाहिए। अच्छे पढ़ करके सो जाना, अच्छे विचार चाहिए। मन अगर स्वच्छ है तो गहरी नींद आ जाती है। सवेरे उठते ही स्वच्छ मन जहाँ ले जाना चाहते हो वहाँ ले जा सकते हो। लेकिन बैठते ही एक ही मन नहीं, दो चीजें चाहिए। चलने के लिए दो चाहिए ना पाव। हाँ, योग यात्रा है। तो बैठते अपने आप से बात करो, मैं कौन। पांच मिनट रोज, जैसे देखो ये सीढ़ी चढ़ना है, हॉल में आना है तो पांच सीढ़ी चढ़ के आना पड़ेगा ना। नहीं, रोज चढ़ के कैसे आए, अभी जंप मारेंगे एकदम। नहीं, रोज भी दिन में तीन दफा भी चढ़ो तो चढ़ के चढ़ेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। तब बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, हर सेकंड शरीर की स्मृति रहती है। बैठते ही योग में बैठते ही अपने आप से बात करो, मैं कौन। हाँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा रूप, ये मेरा रूप है। मेरे सातों गुण, एक एक गुणों को रोज याद करना। याद करते करते वो जागृत हो जाएंगे। रोज बैठते ही सवेरे सवेरे याद करो मेरे गुण कौन से। फिर मेरे कर्म में शरीर को चलाता हूँ, अभी शरीर का कोई काम नहीं है। अब क्यों बैठा हूँ इधर, शिव बाबा को याद करने के लिए। तो बाबा को याद करो, बाबा कौन। हाँ, कौन है वो। हाँ, शिव बाबा के पास क्या है थे? क्यों याद करते हैं उसको, कैसे याद करेंगे। बाबा के पास सर्वशक्तिमान है, एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा आप पवित्रता का सागर हो। बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे आपके जैसे बनना है, तो कैसे बनूं। तो बाबा ने सुना, वो याद है बाबा ने कल कहा था, बच्चे किसी को दुख देना नहीं, मुख से गलत शब्द नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, तो ये भी कर्म है। तो याद आएगा, बाबा आप क्या करते हो, मुझे आपके जैसे बनना है। अभी देखो बहन जी, माता जी क्या करती, यहाँ से घर में फोन करते हो तो मोबाइल ले लो तो फोन का आवाज जाएगा, अपने आप जाएगा। तो क्या मोबाइल है, मोबाइल लिया उठाओ और कान को लगाओ, आवाज जाएगा उधर। नहीं, कैसे जाएगा, क्या करना पड़ता है। हाँ, नंबर दबाएंगे तो जाएगा ना, एक नंबर कम हो गया तो जाएगा। तो बाबा से अगर बात करना चाहते हो तो कौन सा नंबर दबाएंगे, तो जाएगा ना, पुराना नंबर हो गया। अभी बता, अभी बाबा से याद करना चाहते हो तो कौन सा नंबर दबाएंगे, वो पुराना लैंडलाइन था, अभी मोबाइल का नंबर बताओ। बाबा से याद करना फोन लगाना चाहते हो तो नंबर बताओ, भाई बताओ। हाँ देखो भाई जी को याद, अब भी बताया था, पांच नंबर डायल करना पड़ेगा। कौन सा नंबर, एक मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहाँ, ये पांच नंबर किया तो आप आत्मा का आवाज परमात्मा के पास जाता है। अगर शरीर समझ के बाबा आप प्यार के सागर हो, आनंद के साथ, आवाज ऊपर नहीं जाता है। शरीर कितने भक्ति मार्ग में हमने कितनी पूजा किया, कितनी महिमा किया, तो वो बाबा कहते मेरे पास अभी तक तो कोई पहुंचा ही नहीं है, किसी का आवाज मेरे पास आया ही नहीं है। तो बाबा के पास किसका आवाज आएगा। माता जी कहते मैं फोन लेकर के नंबर घुमाया, एक नंबर गलत हो गया तो घर में फोन जाएगा आपका। कहते मैं रोज फोन करती हूँ, आप उठाते नहीं हो। वो कहते फोन आया ही नहीं आपका, अभी आप सही है कि वो सही। तो गलत नंबर करेंगे तो जाएगा। अभी याद रखना, शिव बाबा से बात करना चाहते हो तो पांच नंबर याद रखना। कौन सा पांच नंबर। हाँ देखो, चलो माता जी बता रही, माता जी बताओ, फिर गलत नंबर हो गया तो बताना पड़ेगा ना। माता जी बताओ। हाँ हाँ, चलो फिर बताओ। हाँ आप बता दो, अगर माताओं ने पांच नंबर बताया तो हुशार बताओ, माता जी बताओ, नहीं तो कल गलत नंबर लगाएंगे तो फिर कहेंगे हमारा आवाज गया ही नहीं बाबा के तरफ, बाबा ने जवाब ही नहीं दिया। बाबा जवाब देता है, नंबर को आवाज पहुंचना चाहिए। तो कौन बताएगा बताओ, पांच नंबर बताओ, भाई बताएगा, भाई बताओ। हाँ जल्दी जल्दी बताओ। हाँ एक बताओ। हाँ हाँ हाँ, और मैं कहाँ से आया। देखो नंबर वन, अगर एक नंबर गलत हो गया तो आवाज जाएगा। हाँ, तब कहते हो योग में बैठते ही नींद इसलिए आ रही है, पाव दर्द इसलिए होता है क्योंकि शरीर का भान रहता है। तब बाबा ने कहा बच्चे अशरीरी बनो। अशरीरी कैसे बनेंगे, विधि बनो, कैसे बनेंगे वो, अपने आप बनेंगे नहीं, है ना। विधि चाहिए, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है, तब आपका आवाज बाबा तक पहुंचता है। अगर शरीर का भान है तो आवाज ऊपर जाता नहीं है। ये एक शब्द याद रखना, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में यही एक अंतर। दुनिया में भी लोग कितनी तपस्या करते हैं, कितनी ध्यान करते हैं, बाबा कहते मेरे पास अभी तक कोई आया नहीं है, है ना। तो आपको भी कहेगा बच्चे आपके लिए, बाबा मैं इतनी योग करती हूँ, रोज रोज जो 2 बजे उठी 3 बजे उठ के योग करे, बाबा कहते मेरे पास किसी का आवाज आया ही नहीं अभी तक, तो क्या करेंगे। तो विधि याद रखना। हाँ, तो विधि क्या, आप कहेंगे बहुत मैंने प्यार से खाना बनाया, बहुत ध्यान से खाना बनाया और नमक डालना भूल ही गया, तो कौन खाएगा। आपने तो प्यार से बनाया लेकिन ध्यान नहीं था, तो खाना कोई खाएगा, नमक ही नहीं डाला है। तो विधि चाहिए, हर कर्म की विधि चाहिए। मुरली सुनने की विधि बताया, अब योग करने की भी, अमृत वेले कहीं भी जहाँ बैठो, आपका एक स्थान इधर नहीं तो मेडिटेशन हॉल, बाबा के कमरे में नहीं तो बाद में बैठो, बाबा से बात करो, झोपड़े में बैठो, बाद में सारा दिन खाली है आपके लिए है, शांति समय कहीं भी बैठते हो आधा घंटा कम से कम, बैठते ही आधा घंटे का प्लान विचार चाहिए, बैठते अपने आप से बात करो, मैं कौन, आराम से मन बुद्धि जवाब देती है, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, फिर मैं कहाँ से आया, ऊपर से, ऊपर कौन है, शिव बाबा है, शिव बाबा कौन है, वो पवित्रता का सागर है, बाबा मुझे आपके जैसे बनना है, मैं आपका बच्चा हूँ, बाबा आप शांति के सागर हो, कभी गुस्सा नहीं करते हो, बाबा मैं भी आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करेगा, क्यों, मैं आपका बच्चा हूँ, आप गुस्सा नहीं करते हो, मुझे आपके जैसे बनना है। तीसरा, बाबा आप सबको ज्ञान सुनाते हो, ज्ञान के सागर हो, हम भी आपके बच्चे हैं, मैं भी आज जरूर जो आपने ज्ञान सुनाया मैं भी आज दूसरों को जरूर सुनाऊंगा, ऐसे बाबा से बात करो ना। एक दिन तो दो, एक एक दिन एक एक लो, इतना समझ है ना, नहीं तो 2-3 बाबा के 8 शक्तियां है, एक एक शक्ति 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कम से कम 15-20 मिनट एक स्थिति रोक के बैठना पड़ेगा ना, तो इतना चाहिए। पहले धीरे धीरे पूछते जाओ, 5-10 मिनट तक इसमें गए, फिर बाबा के एक एक शक्ति ले लो, बाबा आप पवित्रता के सागर, आपको शरीर तो नहीं है, किसमें पवित्र हो आप, शरीर पवित्र नहीं, किसमें, आत्मा, आत्मा के मन, आपके मन में कोई देहधारी का विचार नहीं आता है, बाबा आज भी मैं भी कोई भी देहधारी को याद नहीं करूंगा, आपकी बुद्धि किसी कोई देहधारी को याद नहीं करती है, कोई चित्र नहीं आता है, मुझे भी किसी को याद नहीं करना है, आपको ही करना है, मुझे आपके जैसे बनना है, आप कभी गुस्सा करते नहीं हो, बाबा आपका बच्चा हूँ मैं, आज के बाद चाहे कुछ भी हो मैं गुस्सा नहीं करूंगा, रोज बाबा से प्रतिज्ञा करनी है तो याद रहेगा ना। सवेरे सवेरे अपने आप को पढ़ाते हो तो सारा दिन याद रहता है ना। फिर बाबा आप ज्ञान के सागर हो, आप ज्ञान सुनाते हो, मैं भी आज बाबा ज्ञान सुनाऊंगा जरूर, आप जैसे करते हो फॉलो फादर, जैसा बाप वैसा बच्चा, है ना, तो मुख से ज्ञान सुनाना जरूर। तो ऐसे बाबा ने कहा आत्मा समझ, परमात्मा से बात करो। मैं तो कहेंगे योग में बेटा, बाबा मेरे बच्चों को ठीक करो ना, बाबा मेरे पति को, ये बताएंगे बच्चे, बाप पति आपका है तो आप ठीक करो, आपका बच्चा है तो आप ठीक करो, मैं क्या करूँ। हाँ, पति को बच्चों को भी बताना है बाबा को, बाबा मेरा पति नहीं आपका बच्चा है ना, बेटा है बीमार है पढ़ता नहीं है, बाबा वो आपका बच्चा है, उस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो आप, मेरा पति कहेंगे तो आप करो, हाँ मेरा नहीं बाबा आपका बच्चा है, तो बाबा ने कहा शुभ भावना दे दो, सकाश दे दो जरूर, पहले बाबा से अच्छी तरह से बात करो, संबंध जोड़ा, फिर बाबा को बताना, पहले नहीं, पहले आत्मा समझो, शिव बाबा से बात करो, फिर लास्ट में बताना बाबा ये आपका बच्चा पढ़ता ही नहीं है, बहुत परेशान करता है, आपका बच्चा, आप अपने बच्चों को ठीक करो, आप उसको सद्बुद्धि दे दो, आप उसको समझाओ। तब बाबा कहता मेरे से संबंध जोड़ के जो संकल्प करते हो वो संकल्प शक्तिशाली है, तो वो संकल्प वहाँ पहुँचता है, समझ में आया। तो मुरली कैसे पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, योग कैसे करना चाहिए, ये 2 काम करो बस, मेन ये 2 है, बाकी सब अपने आप आएगा, क्योंकि आपके अंदर शक्ति जब आई अपने आप आपकी चलन, आपके बोल, आपकी दृष्टि, आपके कर्म अपने आप सुधर जाएगा। ज्ञान अगर बुद्धि में है तो अपने आप चाहते सामने वाले गुस्सा कर रहे, गलत कुछ बोल रहे, आपसे निकलेगा नहीं, क्यों, होश में हो तो बार बार एक ही मुरली के पट अपने को पढ़ाते रहो, खाना खिलाते हो घर में बच्चों को पति को, मुख से बोलना नहीं उस समय, तो बाबा की याद में खिलाओ। कहते बाबा की याद क्या हो? हाँ, बाबा ने आज मुझे ये कहा था, बाबा ये भी आपका बच्चा है, इसको भी आप पढ़ाओ। मन में मुरली के पॉइंट याद करो। संकल्प आत्मा को पहुंचता है, खाना शरीर को मिलता है, एक साथ दोनों काम हो गया। तन को भी खिला रहे हो, मन को भी खिला रहे हो, दोनों को खिलाना चाहते कि एक ही क्यों खिलाते हो? हाँ, दोनों ठीक होना चाहिए ना, तन भी ठीक होना चाहिए, मन भी ठीक होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? और एक बात सदा याद रखना कि दुनिया में लोग कहते हैं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, है ना, तो सब ठीक कैसे होगा? तो एक शब्द सदा याद रखना कि इस शरीर में मैंने जन्म लिया, अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा मैं जो भी कर्म करता हूँ मेरे अंदर रिकॉर्ड होता है, संस्कार बनता है, उसका फल दुख या सुख मुझे ही भोगना पड़ेगा। ये एक शब्द बार बार याद रखना, समझना। जैसे दुनिया पहले कहते थे भगवान देखता है, हाँ भगवान देखता है, क्या करेगा, हरेक को बुद्धि दी है, समझ है, तो ये याद रखो, हाँ उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, सब लोग करेंगे, मुझे क्या करना है, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे अंदर रिकॉर्ड होगा, उसका फल मुझे ही भोगना पड़ता है, समझ गए। फिर किसी को दोष नहीं देते थे, जैसा कर्म वैसा जीवन। ठीक है, ओम शांति।